पहे दिन सारी अत देह करेंगे यारी। जो योग अपलाई ताते हैं आप्रभ भाई आप्रभ दुख कार घनेरे बुद्धिमंत पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन ही विधि आवत रोके संबर लई सुख अवलोके निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न करना तप कर जो कर्म कृपावे सोई शिव सुख दरसावे तिन्हू न करो न धरे को सत द्रव्य मई न हरे को सो लोक मानि बिन समता दुख सही जीव हमता अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत गिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लागो दुर्लभ निज में साधो जो भाव मोह ते न्यारे दृढ़ ज्ञान प्रसादिक सारे सो धर्म जबे दिए धारे तब ही सुख अचल निहारे सो धर्म मुनि ने करि धरिए किंती अर्थूत उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी
अब यहाँ पर आदरणीय पंडित देवेंद्र कुमार जी का स्वाध्याय नियम सार ग्रंथ के आधार से गाथा 45 से प्रारंभ हो रहा है 48 गाथा से प्रारंभ हो रहा है। आप अपने पास अगर आपके पास ग्रंथ हो तो कृपया 48 गाथा नियम सार ग्रंथ हाँ कर ली।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहं नमो वर्षायाणं नमो लोये सप्तसाहूरम् मंगलं भगवते वीरो मंगलं कोटमोक्षे मंगलं कुंडलकुंडलायो जय परमोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम् विभानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् नमोऽन जिनम वीरम अनंत वर्णानि वंशं सहावम् ओच्छामि नियम सारम् केवलीशु केवली
नियम सार परमानंद शास्त्र का शुद्ध भाव अधिकार हमारी स्वाध्याय में चल रहा है। कल हमने इसके गाथा 48 के 72 नंबर के कलश पर चर्चा की और अब उसके बाद इस शुद्ध भाव अधिकार की एक 49 नंबर की गाथा है और इस गाथा का विषय बहुत भी अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया विषय है। देखिए यह निश्चय नय और व्यवहार नय की उपादेयता का प्रकाशन है। देखिए शब्द थोड़ा ऐसा अपने को लगता है, देखो यहाँ पे तो निश्चय नय और व्यवहार नय की उपादेयता, उपादेयता का मतलब क्या होता है? उपादेय का मतलब अकेला ग्रहण करना है ना, उसको ग्रहण योग्य मानना, यही उपादेय का अर्थ नहीं होता है। पंडित टोडरमल जी ने जब सातवें अधिकार में ये प्रकरण उठाया और उन्होंने कहा कि व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य उनके भावों को कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, ये व्यवहार का स्वरूप है। और निश्चय ने स्वद्रव्य परद्रव्य उनके कारण उनके भाव कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता, व्यवहार नय का स्वरूप बताया। और फिर उन्होंने एक लाइन उसमें डाली, ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता। अगर निश्चय नय का स्वरूप बताया, उन्होंने कहा ऐसे श्रद्धान से संयुक्त होता है। तब वहां शिष्य ने एक प्रश्न उठाया मूषा प्रकाशन, यदि ऐसा है माने क्या मतलब? व्यवहार नय के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान छोड़ना और निश्चय नय के श्रद्धान से संयुक्त होता है इसलिए उसका श्रद्धान अंगीकार करना, यदि ऐसा है तो। पंडित जी से प्रश्न किया, जिन मार्ग में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा सो कैसे? और उसका बहुत मार्मिक उत्तर पंडित जी सामने दिया और वो उत्तर ये दिया कि जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान है और उस व्याख्यान को तो ऐसा ही है इस प्रकार जानना, और कहीं जिनागम में व्यवहार की मुख्यता ये व्याख्यान है उसे क्या जानना, ऐसा है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना, इस प्रकार जानने का नाम दोनों में होगा। ये उपाधेय की बात आई ना, उन्होंने कहा इस प्रकार जानो तुम, किस प्रकार? एक निश्चय नय जैसा बताता है वैसा वस्तु का स्वरूप है और व्यवहार नय बताता है ये संयोग आश्रित निमित्त आश्रित पराश्रित कथन करता है, और जैसा ये कहता है वैसा ही यदि मान लेवे तो मिथ्या तो लोग में भी होता है। अपने घर में कोई मेहमान आया तो अपन घर एक विनय का व्यवहार क्या होता है, भाई साहब आपकी का घर है कोई संकोच मत करना। अगर अब इस कथन को वो ऐसा का ऐसा ही मान ले कि ये मेरा ही घर है और मुझे कुछ भी संकोच नहीं करना है, मेरा घर है तो घर की तिजोरी भी मेरी है, ठीक है ना। अब क्या करे वो, तिजोरी की चाबी लेकर के और तिजोरी का ताला खोल करके उसमें से माल निकालने लगी तो क्या करेगा घर वाला? मोबाइल उठाएगा, नंबर 100 डायल करेगा, आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आप ही ने वो कहा था, अगर हमने ये कहा था आप ही का घर है तो तुझे ये समझना चाहिए था कि आप ही का घर, मतलब मेरा कुछ नहीं। तो इसी तरह व्यवहार में तो संयोग का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रकार से वो कथन करेगा, अब उसी कथन को सत्यार्थ मान लोगे तो कहते किस प्रकार ऐसा भी है और ऐसा भी है, किस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन करने से तो दोनों में उनका ग्रहण करना सहज है। ये पंडित जी साहब ने लिखा। सच में पंडित टोडरमल जी कलम के जादूगर थे, जैसा निश्चय व्यवहार का ऐसा सर्वांग स्पष्टीकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक में उपलब्ध होता है, ऐसा आपको शायद सरल भाषा में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे तो जिनागम में हर जगह ये बात है, लेकिन अपने को तो अपनी भाषा में चाहिए ना, तो अपनी भाषा में पंडित जी साहब ने लिखा कि यहाँ पर भी ये बात जो आई ना 49 नंबर की गाथा में है? क्या बात आई, ये व्यवहार नए निश्चय नए और व्यवहार नए की उपादेयता का प्रकाशन है। तो इसमें से लोग क्या अर्थ निकालते हैं, इसमें से अर्थ निकालते हैं, देखो आचार्य कुंद कुंद ने भी दोनों नयों को उपादेय कहा। और ये सोनगढ़िया लोग होते हैं ना, ये एक नए को हे कहते हैं और एक नए को उपाधेय कहते हैं, ऐसी चर्चा करते हुए लोग आपको कहीं भी मिलते हैं। उपाधेय का मतलब जानना भी होता है, जैसा उस व्यवहार नए का स्वरूप है वैसा जानना, ये जो कह रहा है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा आपने जाना अपने ज्ञान में, तो व्यवहार का सम्यक स्वरूप अपने ज्ञान में अपने जाना, क्योंकि व्यवहार का वही स्वरूप उसको भी उसका उपादेय करना कहा जाता है। इस बात की ओर हमारा ध्यान दिया जाता है, एक सामान्य बात। अब यहाँ देखिए, पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, ये प्रकरण है और इस गाथा में जो बहुत, क्योंकि ये गाथा बहुत लोगों के लिए समझ लीजिए बहुत अर्थ का अनर्थ करने में भी कारण बन जाती है, लोग इस गाथा के आधार से अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको पहले अर्थ समझेंगे बहुत अच्छा। ए देशे भावाणयम पढ़ुच भाई दाहू सौपे सिद्ध सहावा प्रणया संस्कृति जीवा
व्यवहार
करे सब जीव
आपे
नय से जीव सब भवली स्वभाव से। तीन तीन गाथाओं से आचार्य देव ये उच्चारण करते हैं। कभी विचार किया, एक नहीं दो नहीं ये तीसरी गाथा में कह रहे हैं भवलीन, कैसे जीव सब भवलीन सिद्ध स्वभाव। अरे भैया जो भवलीन जीव है ना, जो तुम्हें पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव दिखलाई दे रहे हैं ना, वे भी स्वभाव से देखो तो वे भी सिद्ध होते हैं। और ये बात आचार्य देव ने 47 गाथा में कही, यही बात आचार्य देव ने 48 नंबर की गाथा में कही, और व्यवहार नय की बात जिस गाथा में 49 नंबर की गाथा में कही उसमें भी आचार्य देव ने ये बात कही। और अपने यहाँ पे तो होता है ना, तो बोली लगाते हैं बोली तो क्या बोलते हैं, एक दो फिर प्रतिष्ठाचार्य थोड़े लोभी हो ना, तो कहेंगे ढाई सवा दो ढाई पौने तीन, और फिर जब देखेगा किसी भी तिल में तेल नहीं तो फिर लास्ट में क्या करते हैं वो तीन। अब मान लो आपने तीन कर दिया, मान लीजिए किसी ने 1,00,000 रुपए में बोली दी, आपने 1, 2, 3 कर दिया, फिर कोई आदमी कह गया कि मैं 1,00,000 रुपए दे देंगे तैयार, फिर क्या कहेंगे, भले कमरे में जाके रो लेना, करे मेरी थोड़ी सी जल्दी के कारण, लेकिन भाई साहब वो बोली तो वही रहेगी एक बार, क्योंकि 1, 2, 3 हो गया तो 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है, फुल एंड फाइनल आ गया। तो अब आचार्य देव तीन तीन गाथा में ये बात करेंगे, तो आचार्य कहते हैं एक बात तो फुल एंड फाइनल कर ले इस बात को, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, एक बार उसका निर्णय तो कर ले प्रभु। समझ आया कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे गाथा पड़ेगा, अनुराग पढ़ेंगे कि उपादेय के स्वरूप पर आज मुझे चर्चा करनी बहुत मार्मिक चर्चा है। ये गाथा थोड़ा सा अपने को बहुत गहराई से इस गाथा के मर्म को समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अपने को ऐसा लगता है 48 अभी तक तो सुखभाव अधिकार में ऐसा आचार्य कहते आ रहे थे, अभी तक तो ऐसा कहता रहे, इसमें इतनी गजब की बात कहती है। व्यवहार नहीं से इन भावों को अपना कहकर जब निश्चय ने में घटित किया ना, तो निश्चय ने में शुद्ध गुण और पर्याय वाला आत्मा को कहा वर्तमान। वो चर्चा तो आपने आएगी जितनी अभी आ सकती है। देखते देखिए अन्वय आज में क्या कहते, यह पूर्वोक्त मैंने पूर्व में कहे गए सब भाव। कौन से सब भाव? कि देखो पांच प्रकार के भाव आते हैं। एक है पारनामिक भाव, दूसरा औदयिक भाव, औक्षणिक भाव, क्षयोक्षम भाव और छाई भाव। पांच भाव होते हैं ना अपने यहां पे। तो इन पांच भावों का स्वरूप क्या है? कि चार भाव पर्याय आश्रित कर्म की सापेक्षता वाले भाव है। माने यहां पर सिद्ध दशा को भी छाईक भाव कहा, और छाईक भाव मैंने सापेक्षता की अपेक्षा से उसे छाईक भाव कहा। कर्म के उपशम की अपेक्षा से उस परिणाम को औक्षणिक भाव कहा, कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से पर्याय को क्षयोक्षम भाव कहा, और कर्म के उदय की अपेक्षा से कर्म को उस भाव को पर्याय भाव को क्या बोलेंगे? उदय भाव। मैंने चार भाव नाम पड़े, ये पर्याय और द्रव्य। तो द्रव्य रूप भाव तो एक है पारनामिक भाव, जिसमें किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोक्षम की कोई अपेक्षा नहीं होती, जो निरपेक्ष भाव है। और जो बाकी के चार भाव है पर्याय रूप, तो उन चार भावों रूप जो पर्याय रूप जो चार भाव है उनमें जो कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोक्षम की अपेक्षा आती है, तो उन उत्पाद वे रूप भावों को औक्षणिक भाव, क्षयोक्षम भाव, छायिक भाव, औदयिक भाव आदि कर्म की अपेक्षा से, कर्म का जिस प्रकार का उदय कर्म का निमित्त हो, उदय का निमित्त हो तो उस भाव को उदय, उपशम का निमित्त हो तो भाव को उदय औक्षणिक, क्षय का निमित्त हो तो इधर भाव को छायिक, और क्षयोक्षम का निमित्त हो तो इधर भाव को क्षयोक्षम कहा जाता है। और वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण आत्मवस्तु है, और वो जो द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण आत्मवस्तु है कहते वो प्रमाण का विषय है। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। किसका विषय? तो प्रमाण का विषय। और एक बात वो ध्यान से सुन लो, जैन दर्शन में देवसेन आचार्य ने अपने नए चक्र में लिखा प्रमाण पूज्य नहीं। क्यों? क्योंकि प्रमाण से वस्तु की सिद्धि तो हो गई, लेकिन वस्तु की सिद्धि होने पर भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। वस्तु की सिद्धि माने द्रव्य पर्याय स्वरूप सारी वस्तु है, ये आपने अपने ज्ञान में नक्की कर लिया, निर्णय कर लिया। लेकिन अब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का निर्णय होने के बाद प्रयोजन की सिद्धि पर्याय पर लक्ष्य रखने से नहीं होती, द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य रखने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। और जब तक उस मतलब प्रमाण के विषयभूत वस्तु का निर्णय करके उसमें से प्रयोजन भूत तत्व को नहीं निकाले, भाई अपन दूध जमाते तो दूध जमाते तो काय के लिए जमेंगे, दही बनाते तो दही को मथते हैं तो काय के लिए मथते हैं? देखो वो जो छाछ है, मट्ठा है और घी है, वो दोनों अभी एक में एक है, है ना? उसमें वो पूरा पदार्थ है। अब उसको हमने मथा, तो मथने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें से मक्खन निकालेंगे। वो मक्खन है, वो प्रयोजन भूत है हमारे लिए, हमने उसी उद्देश्य से वो सारा उपक्रम किया था। और जो छाछ है, तो छाछ है तो गांव का कोई भी आवे हमसे फ्री में दे, लेकिन कोई मूर्ख ऐसा करे तो छाछ को तो घर में रखे मक्खन बांटता था, तो क्या बोलेंगे? प्रयोजन मैंने क्या है कि प्रमाण जो ये जो पूरी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, ये अपने ज्ञान में सेट हो गई, ये वस्तु है। अब उसमें से है उपादेय बना हो, अब कहते हैं कि जिससे ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो तो किसको उपादेय और कौन है ये? हे उपादेय का ज्ञान तो उसे तब होगा ना। अरे हे करने के लिए भी हे का ध्यान तो करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा, इस अपेक्षा से व्यवहार को भी उपादेय उसका ज्ञान तो करो। कि ज्ञान नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि पूर्वक मैंने पूर्व कथित सर्वभाव वास्तव में व्यवहार नय का आश्रय करके अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय का आश्रय बने व्यवहार नय की अपेक्षा से संसारी जीवों में विद्यमान कहे गए हैं। आ गया एक बार और आगे क्या कहा, शुद्ध नय से, अरे शुद्ध नय से कैसा है आत्मा, वो कहते हैं शुद्ध नय से संसार में रहने वाले सर्व जीव में किसको छोड़ा, शुद्ध नय से हमें पता बता दिया ना पहले, व्यवहार नय का आश्रय करके पहले बता दिया कि संसारी जीवों में ये भाव विद्यमान है, ये बता दिया। अब शुद्ध नय से संसार में रहने वाले सर्व जीव कैसे हैं, वो कहते सिद्ध स्वभावी हैं। सर्व जीव सिद्ध स्वभावी, इसमें किसी जीव को नहीं छोड़ा। ये चर्चा आगे सर्व जीव सिद्ध स्वभावी हैं, ये बहुत गंभीर चर्चा है। शुद्ध गुण पर्यायों वाले ऐसा कहकर के वो बात करेंगे, वो बात तो अपनी आएगी। अभी अपनी टीका में जो विषय उठाया था ना टीका में, तो टीका में उन्होंने क्या कहा, यह निश्चय नये और व्यवहार नये के उपादेयता का प्रकाशन है ना? और प्रकाशन का मतलब होता है कथन में, निश्चय और व्यवहार नये के उपादेयता। अब निश्चय और व्यवहार नये की उपादेयता का मायने क्या होता है ना, उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण फुटनोट में किया है और ये फुटनोट का इतिहास आप समझ लें बहुत अच्छे से कि अपने सोनगढ़ की ये पद्धति रही गुरुदेव श्री के टाइम पर कि मान लीजिए कोई बात का आपको स्पष्टीकरण करना है, किसी का आपको विशेष स्पष्टीकरण करना है, तो अपने यहाँ पर मूल ग्रंथ की भाषा में कोई भी तोड़ मरोड़ करने की अनुमति नहीं है। आप मूल ग्रंथ की भाषा में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी कोई बात उसके स्पष्टीकरण के रूप में कहनी है, या तो बनाइए आप कोष्टक और कोष्टक में वो बात लिखिए, और या वो फुटनोट बनेगा और फुटनोट में वो बात लिखी जाएगी। क्या मतलब इसका, कि मूल ग्रंथ के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ये गुरुदेव की पद्धति रही। और ये जो फुटनोट और ये जो कोष्टक वगैरह बनाए जाते थे, ऐसा नहीं तो मर्जी पड़े जिसने मर्जी पड़े जो कोष्टक बना दिया फुटनोट लिख दिए, ऐसा नहीं चलता। ये सारे फुटनोट और कोष्टक गुरुदेव श्री को पढ़ाए जाते थे, इस प्रकरण के संदर्भ में ये स्पष्टीकरण करने के लिए हम ये कोष्टक अथवा ये फुटनोट बना रहे हैं। रामजी भाई, किमचंद भाई, हिम्मत भाई, चंदू भाई वगैरह जो जो भी उस समय के बड़े बड़े विद्वान उस समय वहां होते थे, वो सब उस कोष्टक को देखते थे, फुटनोट को देखते थे, उनसे वो फाइनल होने के बाद ग्रंथ में डाला जाता था। एक प्रामाणिकता गुरुदेव श्री के समय से सोनगढ़ के प्रकाशनों में गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जो जो भी प्रकाशन हुए उनकी प्रमाणिकता का ये एक दस्तावेज कि इतिहास भी हमें ख्याल में होना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुदेव हमारे लिए प्रमाणिकता की कौन सी मोहर साफ छोड़ के गए, बहुत क्योंकि जिनवाणी का एक भी बदलने के पहले एक भी शब्द इधर से उधर करने के पहले लाख बार सुन लो। सुनना ही नहीं है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा तो हम जिनवाणी का अर्थ, क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि उनको ये जो फुटनोट बना, ये तो गुरुदेव का अभिप्राय इसमें शामिल था या एक ज्ञानी धर्मात्मा का अभिप्राय शामिल था, और हम के लिए नहीं, हम भी बनाएंगे अपने हिसाब से कुछ, हम भी बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा अभिप्राय जाएगा और हमारे अभिप्राय में कोई समीचीन का सम्यकता है, इस बात की तो वो जानेंगे ना। इसलिए जो अभी मेरा जो विशेष रूप से आग्रह रहता है, अभी जो इस समय सार वगैरह भी जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें एक गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जो प्रकाशन जिस रूप में हुआ है, हमें गुरुदेव श्री के प्रकाशन को उस रूप में, हाँ गोमा पुरुष प्रिंटिंग इन संबंधी कोई अशुद्धि है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन एक भी शब्द अपनी मर्जी से उसमें ना जोड़ेंगे ना उसमें से घटाएंगे। ये गुरुदेव श्री की जो प्रमाणिकता की नीति रही है, ये अपन लोग ये इस रूप में समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जिनवाणी जो गुरुदेव श्री के टाइम पर छपी ना, एक बार मैंने ये नहीं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक वर्तमान के किसी मुनि ने ये बात कही थी प्रकाशनों के संबंध में, जितने प्रामाणिक प्रकाशन संगढ़ के हैं उतने प्रामाणिक प्रकाशन की संस्था के, समय सार वगैरह के प्रकाशन के संबंध में चर्चा आई, उन्होंने ये बात कही कि जितने प्रामाणिक सौंदर्य के प्रकाशन है कितनी मेहनत उस समय वो लोग करते हैं, ये अपने को ख्याल रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा, प्रमाणभूत ज्ञान में, प्रमाणभूत ज्ञान क्या मतलब क्या होता है, द्रव्य और पर्याय समग्र वस्तु का ज्ञान, उसको बोलते प्रमाणभूत ज्ञान में शुद्धात्म द्रव्य का तथा उसकी पर्यायों का, आ गया द्रव्य और पर्याय है ना, द्रव्य और पर्याय मिला करके द्रव्य पर्यायमय वस्तु, कि वो द्रव्य पर्यायमय वस्तु प्रमाण का विषय बराबर। तो वो कहते हैं कि प्रमाणभूत ज्ञान में शुद्धात्म द्रव्य का तथा उसकी पर्यायों का माने दोनों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, माने द्रव्य और पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु का पहले स्वीकार हो ज्ञान है, पर्याय को माने ही नहीं तो एक पर्याय को अगर तू मानता ही नहीं तो आश्रय कौन करेगा, और पर्याय जितनी ही वस्तु को माने तो आश्रय का विषय कौन बचा, आश्रय का विषय है वस्तु और आश्रय करने वाली है पर्याय, आ गया, जो आश्रय करने वाली है और जो आश्रयभूत है, ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, यानी क्या मतलब, प्रमाणभूत वस्तु की अपेक्षा से अथवा व्यवहार में की अपेक्षा से विभाव पर्याय अर्थात विशेष भाव रूप पर्याय, विभाव पर्याय का मतलब यहाँ पे क्या लेना, उदय भाव, उपशम भाव, सूक्ष्म भाव, क्षयिक भाव, इन चारों भावों को विभाव पर्याय, वी माने विशेष भाव, अपन जो विभाव की जो व्याख्या करते हैं ना, आत्म स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, और वो राज के संबंध में उतनी व्याख्या है, लेकिन यहाँ पर विशेष भाव माने आत्मा है वो सामान्य एक रूप भाव, और जो ये पर्याय है ये विशेष अनेक रूप भाव, उदय उपशम शेष उपशम, आत्मा है वो त्रिकाल एक रूप है और ये पर्याय प्रति समय बदलने वाले, ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है, कथनचित माने पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अथवा व्यवहार नय की अपेक्षा से अथवा प्रमाण भूत द्रव्य की अपेक्षा से, प्रमाण भूत द्रव्य की अगर हम बात करेंगे तो कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है, ऐसा स्वीकार ही जिसके ज्ञान में न हो, मतलब पर्याय सर्वथा अवस्तु लेकिन अगर सर्वथा पर्याय को तुम अवस्तु कहोगे, आश्रय करने वाली तो पर्याय, तो वो दृष्टि के विषय में पर्याय है। ठीक, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, दृष्टि के विषय में पर्याय है। लेकिन दृष्टि स्वयं क्या है, दृष्टि खुद क्या है? तो दृष्टि तो पर्याय है, आ गया, दृष्टि का विषय पर्याय नहीं है, लेकिन दृष्टि खुद पर्याय है। अगर पर्याय को सर्वथा अस्वीकार किया जाए, कह देंगे सिंह जैसे नहीं होते, ऐसे वस्तु में पर्याय नहीं होती, तो ध्रुव में कोई क्रिया नहीं होती, तो फिर ध्रुव का अवलंबन, ध्रुव की प्रसिद्धि, ध्रुव की प्रसिद्धि ध्रुव नहीं करता, ध्रुव की प्रसिद्धि ध्रुव के सन्मुख झुकी हुई वर्तमान पर्याय करता। अब अगर पर्याय का स्वीकार ही जिसके ज्ञान में नहीं होगा, कथनचित शब्द का प्रयोग किया, कथनचित मैंने सर्वथा पर्याय रूपी वस्तु को मान ले, सर्वथा अगर तुम पर्याय रूप वस्तु को मान लोगे, पर्याय तो एक समय की है, पर्याय तो अगले समय नाश हो जाएगी, जो अगले समय वह नाश हो जाएगी वस्तु खत्म। तो पर्याय रूप वस्तु को मान ले, पर्याय रूप ही वस्तु को मान ले, तो आश्रयभूत तत्व का अभाव होगा, और पर्याय का सर्वथा स्वीकार नहीं करे तो आश्रय करने योग्य कौन, करने वाला कौन है, वो नहीं रहता है ना। इसलिए वस्तु में कथनचित पर्याय है, व्यवहार में की अपेक्षा से, प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से, प्रमाणभूत वस्तु की अपेक्षा से विचार करे तो वस्तु में पर्याय है। एक कथनचित शब्द का प्रयोग इसलिए किया, तो देखो उसका स्वीकार ही जिसके ज्ञान में न हो, उसे शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। ये क्या बात है, ये कौन सी शर्त लगाई तुमने, तो पर्याय को हम स्वीकार नहीं कर रहे तो शुद्धात्म द्रव्य का भी हमें सच्चा ज्ञान नहीं होगा, ये कैसे कहा? ये प्रश्न कोई खड़ा करेगा, हमने पर्याय को मान लीजिए, हमने अस्वीकार किया, तो पर्याय को अस्वीकार करने में शुद्धात्म द्रव्य का सच्चा ज्ञान नहीं होने का क्या संबंध है? भाई साहब, शुद्धात्म द्रव्य का सच्चा ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान द्रव्य में नहीं होता, द्रव्य का ज्ञान वर्तमान पर्याय जो द्रव्य के सम्मुख झुकती है तो उस पर्याय में होता है, और पर्याय को तुमने स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। आ गया, और पर्याय रूप वस्तु को, पर्याय रूप ही वस्तु, पर्याय जितना ही वस्तु के मान लोगे तो तुम वस्तु का ही खत्म हो आगे नहीं आगे। वो यहां पे लिया कि सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार मय के विषयों का भी, व्यवहार मय का विषय क्या है, ये जो पर्याय वगैरह है ना, ये व्यवहार नय का, व्यवहार नय के विषय है, तो व्यवहार नय के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है, उनका ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, पर्याय है, द्रव्य है, पर्याय है, ऐसा उसका ज्ञान ग्रहण करने योग्य। ज्ञान में भी देखो, श्रद्धा के विषय में पर्याय है, और ज्ञान के विषय में भी यदि पर्याय नहीं हो, सम्यक ज्ञान का विषय भी यदि पर्याय नहीं होवे, तो कितनी शुद्धता, कितनी अशुद्धता, पूर्ण शुद्धता कैसी, इसका ज्ञान हुए बिना, अभी इतनी अशुद्धता मेरी परिणति में है, इसका ज्ञान हुए बिना उस अशुद्धता का अभाव करने के लिए और पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति करने के लिए द्रव्य स्वभाव का उग्र आश्रय कैसे करेगा? बिंदु समझा रहा है कि नहीं, है ना भाई? उसका उग्र आश्रय कब करेगा? तो उग्र आश्रय तो तभी करेगा, श्रद्धा के विषय में तो पर्याय है, श्रद्धा की दुनिया में तो श्रद्धा नाम की चीज नहीं है, समझना बात को, क्या कहा, श्रद्धा की दुनिया में तो श्रद्धा नाम की चीज नहीं है, सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं, बाबूजी ने लिखा ध्रुव का अहम नहीं वरन स्वयं ध्रुव हूं, ऐसे संवेदन का नाम संवेदन है, ध्रुव का अहम उसमें तो अहम का अहम प्रवर्तित होता है, ये उनके शब्द गुरुदेव भी होते थे। समय दर्शन नौ विषय समय दर्शन नदी आगे, लेकिन उसके साथ में रहा हुआ ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान ने ही तो ये निर्णय करके दिया कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का निर्णय किसमें हुआ, ज्ञान में हुआ। और ज्ञान ने श्रद्धा को श्रद्धा का विषय बताया, श्रद्धा के विषय का निर्णय श्रद्धा नहीं करती, निर्णय करने की क्षमता ज्ञान में है, श्रद्धा तो अंधी है, वो जानती नहीं है। श्रद्धा श्रद्धा के विषय को जानती नहीं है, उसको खाली वे करना था और सारा निर्णय ज्ञान में। अब ज्ञान में अगर उस बात का स्वीकार नहीं हो तो भी काम खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं इसलिए यहां पे क्या कहते हैं, इसलिए व्यवहार नए के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य, ज्ञान को ग्रहण करने योग्य क्यों लिखा, अरे आश्रय करने योग्य नहीं है। व्यवहार नए के विषय अर्थात पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है, इस अपेक्षा से उसका किया जाएगा विषय, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है, श्रद्धा का श्रद्धे नहीं है, ये छल ग्रहण करके तुम उसको ज्ञान के विषय में से भी बाहर कर दो, ये नहीं चलेगा। आ गया, तो कहते ग्रहण करने योग्य, ज्ञान को ग्रहण करने योग्य, ऐसी विवक्षा से ही यहाँ व्यवहार नए को उपाधि कहा है, उनका ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, इस विवक्षा से उसको उपाधि। हाँ, उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य है ऐसी विवक्षा से नहीं कि तुम उस व्यवहार ने का आश्रय करने लगो, अर्थात व्यवहार ने जिन पर्याय भावों को आत्मा के वस्तु आत्मा के अस्तित्व में बतलाता है, तो उन पर्याय जितना ही तुम आत्मा को मानने लगो, उस पर्याय रूप ही आत्मा को मानने लगो, तो बज्जे मोड़ा ही पर समय बने हो। तो इस व्यवस्था से हमने नहीं कहा उनका ज्ञान ग्रहण करें, फिर छुड़ाया क्या है, व्यवहार नहीं का आश्रय छुड़ाया, व्यवहार नहीं का ज्ञान ही छुड़ाया। हम गलती क्या करते, ज्ञान छोड़ने की बात करते हैं, आश्रय बनाए रखते हैं, गलती क्या करते हैं हम लोग, व्यवहार से नहीं, नहीं पर्याय की बात नहीं करो, पर्याय की बात नहीं करो, और अंदर में पर्याय बुद्धि जरा भी रहती है। आ गया, वो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि भाई वो ग्रहण करने योग्य है ना, व्यवहार में का उपजय उपाधि कहा है, उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य है ऐसी विवस्था से नहीं। आ गया, फिर उसके बाद क्या कहा, व्यवहार नय के विषयों का आश्रय अर्थात आलंबन अर्थात झुकाव अर्थात सन्मुखता अर्थात भावना तो छोड़ने योग्य है ही, उसका आश्रय अवलंबन वगैरह तो वो तो छोड़ने योग्य है ही, और छोड़ने योग्य है ही के बाद फिर क्या करें, ऐसी ऐसा समझाने के लिए, अब किस बात को समझाने के लिए, व्यवहार नहीं के विषय का आश्रय करने योग्य नहीं, ज्ञान करने योग्य है, ये बात हम 50 नंबर की गाथा में समझाए, क्योंकि अगर व्यवहार नहीं के विषय का ज्ञान भी नहीं करोगे, तो जिसका ज्ञान भी नहीं करोगे उसका आश्रय कैसे छोड़ोगे, आश्रय छोड़ने के लिए भी जिसका आश्रय छोड़ना है उसका ज्ञान करना है, मुझे किस रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते का ज्ञान तो करोगे, इस रास्ते नहीं कि कौन सा रास्ता है जिसे मुझे नहीं जाना, अब ज्ञान भी नहीं करेगा, नहीं जिस रास्ते जाना नहीं उसका ज्ञान तो करेगा, ज्ञान नहीं करेगा तो पता लगा उसी रास्ते चला गया, इसलिए ज्ञान कर और ज्ञान करने के साथ ही उसका निषेध कर। व्यवहार नहीं की स्थापना का मतलब ही व्यवहार नहीं की स्थापना की सार्थकता उसकी निषेध में है, व्यवहार नहीं की स्थापना की स्थापना कर ली चाहिए पर्याय वगैरह का ज्ञान करा है ना, और उसका निषेध करो, ये दृष्टि का विषय है, ये सन्मुखता करने लायक है, तो ये सन्मुखता करने लायक नहीं है तो कौन सन्मुखता करने लायक नहीं, इसका ज्ञान करना होगा क्या नहीं करना होगा, तो इस विवस्था से उपाधि कहा है, और बाकी उसका आश्रय करने योग्य वो तो छोड़ने योग्य ही है, ऐसा समझाने के लिए 50वीं गाथा में व्यवहार नय को स्पष्ट रूप से ये कहा जाएगा। सही बात समझ आगे आएगा। और गुरुदेव को जब 50 नंबर की गाथा की प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले लाइन बोलते हैं, भाई आप गाथा बड़ी सख्त है, बहुत सख्त गाथा है, बहुत कठोर गाथा है। क्यों कठोर गाथा है? तो छाई भाव को बंद कर देंगे। क्यों? अभी तो हमको शरीर पर द्रव्य नहीं लगता, अभी तो पुण्य को हेर गए तो कब कभी छूटती है, यहां पर छाई भाव भी है, तो कितनी कठोर गाथा होगी। गुरुदेव यहां भी यहां पर पूछने का तो 50 नंबर की गाथा में हे कहा जाएगा। जिस जीव को अभिप्राय में शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय का ग्रहण, देखो अभी बहुत बढ़िया बात है, जिस जीव के अभिप्राय में शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग हो, शुद्धात्म द्रव्य का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग हो, वही जीव द्रव्य का तथा पर्यायों का ज्ञान सम्यक है ऐसा समझना चाहिए। मैंने उसी जीव को द्रव्य और पर्याय का ज्ञान सम्यक है, अन्य को नहीं। मैंने पर्याय का ज्ञान सम्यक किसको? जिसको पर्याय का आश्रय नहीं। द्रव्य का ज्ञान सम्यक किसको? जिसको द्रव्य का आश्रय है। मैंने द्रव्य और पर्याय का ज्ञान करके द्रव्य का आश्रय करे और पर्याय का आश्रय छोड़े। ज्ञान अगर ज्ञान नहीं करे, दोनों का ज्ञान में नहीं होगा, दोनों को ज्ञान में नहीं लोगे तो किसका आश्रय करना, किसका आश्रय छोड़ना। भाई आप बाजार से मूंगफली लाते हो, मूंगफली लाते हो तो छिलके भी उस समय ज्ञान करते हो ना, खाने योग्य क्या है, फेंकने योग्य क्या है। लेकिन लेकर के तो आते हो ना, जिसको फेंकना है उसको भी घर में लेके आते हो, और लेकर के आने के बाद छीलने के बाद अपना माल निकाल लिया और छिलका तो वो तो हर चीज में है। सब्जी लाते हैं तो सब्जी में छिलका भी है, इसमें से कौन सा हिस्सा सब्जी बनने के काम आएगा और कौन सा हिस्सा निकाल करके फेंक दिया जाए। अगर लोक में भी इस तरह का ध्यान नहीं हो तो लोक व्यवहार नहीं चल सकता। होशमार्ग में वही बात है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, अगर ये पता नहीं हो तो जो ग्रहण करने योग्य है पता लगा उसे तो छोड़ दिया, और जो छोड़ने योग्य है पता लगा उसे ग्रहण कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि भैया ये दवा ले लो। अब दो तरह की दवा है, एक तो पर्ची पे लिखी हुई दवा, तीन तरह से दवा का शुभ समझो। एक तो पर्ची पे डॉक्टर ने लिखी दवा का नाम लिखा पर्ची, तो उसे खाए नहीं, इतना समझदार होता है क्या करें। जब मार्केट में गया, मेडिकल पे गया, मेडिकल से वो दवा का पैकेट ले गया, तो जो दवा है उस पर दवा का नाम नहीं है और जो पैकेट है वो दवा नहीं है। पैकेट पर दवा का नाम है लेकिन वो दवा नहीं, और दवा पर दवा का नाम नहीं है लेकिन वो दवा है। अब अगर हमें ये ध्यान नहीं हो, हमें भी नहीं तो वो नाम इस पर लिखा है, तो जिस पर नाम लिखा हम तो उसको खाएंगे, और जिस पर नाम नहीं लिखा हम उसको तो फेंक देंगे। ऐसा करते हैं वो ना, ये द्रव्य और पर्याय का ऐसा स्वरूप समझकर किसका अवलंबन करना और किसका निषेध करना, निषेध करने के लिए भी उसका ज्ञान होना जरूरी है, अवलंबन करने के लिए भी उसका ज्ञान होना जरूरी है। बस इतनी विवक्षा, इसका कारण क्या है, अभी तक इतना निषेध 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 रूप वर्णन करते आए ना, तो कोई सर्वथा उसको अवस्तु में नहीं ले जाए। इसलिए आचार्य देव ने एक बीच में ये 50 नंबर की गाथा डाली, फिर तो अगली गाथा में जब ये शुद्ध भाव अधिकार का उपसंहार करेंगे, एक वास्तव में तो शुद्ध भाव अधिकार की पूर्णता 50 गाथा में गुजर, फिर तो शुद्ध भाव का अवलंबन लेकर के प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके निमित्तों की चर्चा 50 से 55 नंबर की गाथा। शुद्ध भाव अधिकार का मूल विषय तो 50 गाथा में पूरा हो जाता है ना, तो बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से, बहुत विचार पूर्वक अपने को यह विषय समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विषय में थोड़ी सी भी यदि हमारी भूल नहीं तो हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शेष चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करेंगे।
Thank you.